ओ भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जाय उदीरहे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ श्रीमद् भागवतम के कक्ष में पांचवा स्कंद अध्याय क्रमांक 11 झट भारत द्वारा राजा रहुगुणा को शिक्षा, आज है श्लोक क्रमांक 6। दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यक्तितः कालोपपन्ना फलमाव्यक्ति। आलिंग्य माया रचितांतरात्मा आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनां संस्मृति चक्रकूटक स्वदेहिनां संस्मृति चक्रकूट दुःखं अशुभ कर्मों के कारण दुख, सुखं शुभ कर्म से उत्पन्न सुख, व्यतिरिक्तम मोह च तथा तीव्रम अत्यंत कठिन कालक्रम में प्राप्त फलम फल अव्यक्ति उत्पन्न करता है। आलिंग्य आलिंगन करते हुए माया रचिता प्रकृति द्वारा उत्पन्न अंतरात्मा मन स्वदेहिनाम स्वयं जीव संस्मृति संसार की प्रतिक्रियाओं का चक्रकुट जो जीव को चक्कर में डाल देता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत संस्रूपात की सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है, इसे संस्मृति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त यह शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है। तात्पर्य, इस संसार में प्रकृति के वशीभूत होकर मानसिक विषयों से सुख तथा दुख उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा मोहग्रस्त होकर विभिन्न उपाधियों के अंतर्गत अनवरत बद्ध जीवन बिताता है, बद्ध जीवन बिताता रहता है। ऐसी जीवात्माएं नित्य बद्ध कही जाती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मन ही बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए समस्त योग क्रियाएं मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होती है। यदि मन वश में हो जाता है तो इंद्रियां स्वयमेव नियंत्रित रहती है और इस तरह आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल से बच जाता है। यदि मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहे, सैव मन कृष्ण पदारविंदयो, तो इंद्रियां स्वतः ईश्वर की सेवा में लग जाती है। जब मन तथा इंद्रियां भक्ति में लग जाती है तो जीवात्मा सहज ही कृष्ण भक्त बन जाता है। जब कोई मनुष्य निरंतर कृष्ण का ध्यान धरता है तो वह परम योगी बन जाता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। योगी नाम अपि सर्वेषां मन गतेन अंतरात्मनाम। यह अंतरात्मा ही मन है जो प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है। जैसे कि यहाँ कहा गया है, माया रचितात्मा स्वदेहिनम संस्मृति चक्र ककुट। मन परम शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढका ओढ़ा ओढ़ा करके उसे भवसागर की तरंगों में ला पटकता है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्तं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही सुंदर जो है श्लोक है, तो यहाँ जो जड़ भारत है रहुगुणा उनको ये बता रहे किस प्रकार हमारा मन यही हमें इस संसार में आत्मा को पकड़कर वो क्या करता है कि हमें इस संसार में घुमाता रहता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आतंकवादी लोग वो क्या करते हैं, हाईजैक, आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो इसी प्रकार आप देखते हैं कि हमारा जो मन है वो हमारी आत्मा को एक प्रकार से हाईजैक कर लेता है। तो आप देखते हैं कि काफी आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी किसी के शरीर में कुछ ये आ जाता है, भूत प्रेत। वो क्या है कि एक सूक्ष्म जीवात्मा किसी एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस शरीर के द्वारा वो क्या करती है, यानी अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर लेती है। तो एक बार एक महाराज एक कथा में ऐसी कथा बता रहे थे। तो एक बार एक बड़े नदी में एक लाश बहती जा रही थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जमाने में लोग क्या करते थे, मरी हुई लाश को पानी में, गंगा जी में, नदियों में डालते थे। तो मुझे याद है काफी साल, 20 साल पहले मैं एक बार वृंदावन आया था, हमारे साथ लगभग 1000 भक्त लोग थे। तो हम लोग वहां ब्रह्मांड घाट गए थे। तो वहां महाराज ने कहा कि ठीक है, अभी यहाँ बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ आप लोगों को सबको स्नान करना चाहिए, पवित्र है। तो सारे भक्त लोग देख रहे थे, तो किसने देखा, अरे देखो कुछ आ रहा है बह के। तो एक ऐसा एक दृश्य सबको नजर आया कि एक मरा हुआ लाश जो पानी में तैर रहा था, जिसका गर्दन नहीं था, हाथ ऐसे ऊपर थे और पैर भी ऊपर थे और वो बहता जा रहा था, और कुछ कौवे उसमें से जो भी है शरीर का मांस खा रहे थे। तो ये ऐसी जो कहानी जो मैं बता रहा हूँ, वो एक सच्चाई सबने देखा, तो सबको यानी जीवन की सच्चाई समझ में आई कि जिंदगी क्या है। तो एक ऐसी कहानी है जिसमें वो बता रहे थे कि एक बार एक कौवा ऐसे ही कोई शरीर को वो खा रहा था, तो खाने में इतना मग्न था कि वो ये भूल ही गया कि वो लाश उसको कहाँ ले जा रही है। तो आप देखते कि सारी नदियां वो धीरे धीरे समंदर में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन ये इतना मग्न था खाने में कि उसने ऊपर कभी देखा ही नहीं अगल बगल में क्या हो रहा है। और धीरे धीरे वो लाश है काफी गहरे समंदर के अंदर पहुंच गई। अभी आप देखते कि कौवा ज्यादा लंबा उड़ान भर नहीं सकता, जैसे हंस है, काफी ऐसे पक्षी है वो लंबी लंबी उड़ान भर लेते हैं, तो लेकिन कौवा ये लंबी उड़ान नहीं भर सकता। तो क्या हो गया कि बाद में जैसे वो गहरे समुद्र में लाश चली गई, तो मछलियां उसको फिर वो नीचे खींचने लग गई, बड़ी बड़ी मछलियां। तो उसने देखा, अरे, तो फिर ऊपर देखा और अगल बगल में देखा, सब जगह पानी पानी है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की आज की ऐसी स्थिति है। तो आज किसने एक ऐसे एक वीडियो मुझे दिखाया सुबह, तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखो, अगर एक व्यक्ति अगर सोचता है, चलो प्रभुपाद जी अपने खुद की एक सच्चाई बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैंने पहले ऐसे सोचा था कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं इसमें बहुत धन कमाऊंगा। हालांकि मैं अपने गुरु महाराज को जब जवान था तभी मिला था, 25 साल का था, तो तभी गुरु महाराज ने कहा था ठीक है अगर आप अंग्रेजी में प्रचार करेंगे तो अच्छा सेवा दे सकते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे बिजनेस में लग गया और जिसमें मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक बड़ा धनी टाटा बिरला जैसे बन जाऊंगा, लेकिन वो स्थिति जो है विपरीत हो गई और धीरे धीरे क्या हो गया कि मेरा सब कुछ जो भी धन था वो सब खत्म हो गया और मैं कंगाल हो गया। और फिर मुझे अभी लगा चलो जैसे मेरे गुरु महाराज ने बताया ऐसे सब कुछ छोड़ना होगा। तो प्रभुपाद जी के जीवन में एक ऐसी स्थिति आई, तो एक बार ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी कि उन्होंने जो गीता की जो टीका उन्होंने लिखी थी, तो उनके पत्नी ने वो चाय के बिस्किट के लिए, पहले लोग आप देखते कि अंग्रेज के जमाने में ये बिस्किट थे तो लोग चाय के साथ बिस्किट खाते थे, तो उनके पत्नी ने वो ये किताब जो बड़ी एक जो है उनके पास ये थी डायरी, तो वो चाय के बिस्किट के लिए उन्होंने वो ऐसे बेच दी थी। तो प्रभुपाद जी ने घर में ढूंढा, सब जगह कहीं नजर नहीं आई, तो उन्होंने पूछा अरे कहाँ रखा है मेरी डायरी, तो उन्होंने कहा हमने तो बिस्किट वाले को बेच दी। तो प्रभुपाद जी ने कहा टी और मी, आप लोग समझते हैं टी का मतलब चाय, मी का मतलब मैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा आपको चाय चाहिए क्या मैं चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं हमें चाय चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने सोचा ठीक है अभी ये समय है मुझे घर छोड़ना चाहिए। तो कभी कभी हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारा मन, तो यहाँ जड़ भारत जो है तो राजा रघुगुणा को ये बता रहे कि हमारा मन हमें यहाँ ऐसे हद तक ले जाएगा कि जैसे मैं बता रहा था कि वो मन क्या करता है कि आत्मा को पकड़ लेता है, उसको बंदी बना देता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु महाराज एक बहुत अच्छी कहानी बताते थे। तो बताते हैं कि दो बच्चे थे और एक कोई बनिया था, और ये दोनों बड़े मिजाज बच्चे थे। तो कोई भी टीचर ले आए उनको पढ़ाने के लिए बता दे वो पढ़ते नहीं थे, और ये ऐसे भी कुछ वो ये भी करते थे बीड़ी वगैरह पीना। तो एक बार गुरुजी ने देखा कि ये दोनों बिस्तर में चुपके बीड़ी पी रहे, तो उन्होंने जैसे दरवाजा खटखटाया तो इन्होंने बीड़ी बुझा दिया, फिर ऐसे ढोंग किया कि जैसे वो सो रहे। तो गुरुजी ने आके पूछा, अरे यहां बीड़ी कौन पी रहा है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी देखो हम तो सो रहे थे, कोई व्यक्ति हमारे हाथ में बीड़ी रख के अगर पी रहा है तो हम क्या करें। तो ये इतने चालू थे दोनों, लालू और कालू उनका नाम था। और उन्होंने कहा कि देखो कोई, हम जब सो रहे थे तो किसने हमारे हाथ में बीड़ी रख दिया और वो बीड़ी पी रहे थे, तो हमने तो ऐसे सचमुच तुम्हें हमने तो कोई बीड़ी पिया नहीं। तो आज हम देखते हैं कि खास करके यहां जो बता रहे कि संसार चक्र, संस्कृति चक्र, यहां संस्कृति दिया है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु और पार्वती का भी एक अच्छा उल्लेख आता है। उसमें यही बताया है कि चित्रकेतु महाराज वो पार्वती से कहते हैं कि एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, संसार चक्र एषाम जंतुर अज्ञान मोहितः भ्रमयान सुखम च दुखम च भुंगते सर्वत्र सर्वदा। हाँ, वो बताते हैं कि इस भौतिक जगत में अज्ञान के कारण एक जीवात्मा ये भौतिक जगत का जो अंधकार जो वन है इसमें आनंद और दुख इसको जो है झेलते हुए वो क्या करता है कि भ्रमण करता रहता है। और वो बताते कि इसके लिए आप और मैं कारण नहीं, ये पार्वती को चित्रकेतु बता रहे। तो भौतिक जगत में भी आप लोग कभी मेले में गए होंगे, अंग्रेजी में कहते हैं कि फेरिस व्हील, आप कभी मेले में गए होंगे, एक बड़ा एक चक्र होता है उसमें हम लोग बैठते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम जननी जडरे शयनम। तो कभी स्वर्ग लोक में, कभी नरक लोक में, कभी भौतिक जगत में। तो इस प्रकार चित्रकेतु तो पार्वती को बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा, यहां प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितने बद्ध जीव है, हाँ, वो क्या समझते हैं अपने मन के कारण, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है। और इस प्रकार एक व्यक्ति सुख दुख में वो बंधा जाता है और ये अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण वो है इस भौतिक जगत में बंधा रहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की जो माया शक्ति है, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया, तो भगवान की जो शक्ति है माया देवी है, तो भगवान बताते हैं कि इसको पार कर पाना मुश्किल है। तो 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मम अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मन शष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो प्रभुपाद जी कर्षति के लिए क्या लिखते हैं, इस भौतिक जगत में वो दुख पाता रहता है, घिसता रहता है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जितने भी आज इस संसार में लोग लगे हुए हैं तो हर एक व्यक्ति माया के अधीन में ही है। और माया क्या करती है कि माया की भी दो शक्तियां हैं, हालांकि माया देवी के दो शक्ति हैं, एक शक्ति को कहते हैं वो है आवरणात्मिक और दूसरे को कहते हैं प्रक्षेपात्मिक। आवरण का मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग जैसे माताएं ये डालते हैं सामने पर्दा, तो जब ये आवरणात्मिक का मतलब है कि उसको ढक देना, उसके ज्ञान को ढक देना। जैसे एक सुअर है, सुअर को ये पता नहीं चलता कि वो क्या खा रहा है, उसका जो ज्ञान है उसको बिल्कुल आवरण कर दिया है। तो ऐसे गौतम ऋषि की कहानी आती है, उन्होंने जब इंद्र को ये श्राप दिया था तो इंद्र भी सोच रहे थे चलो अच्छा परिवार है, बहुत सारे पत्नियां हैं बच्चे हैं, तो इसको कहते हैं आवरणात्मिक। एक व्यक्ति को समझ भी नहीं आता है कि क्या है। तो भौतिक जगत में जितने भी बद्ध जीव है तो ये माया की एक शक्ति है, वो क्या करती है हमें हमारा ज्ञान को ढक देती है। और दूसरा जो है प्रक्षेपात्मिक, आप लोगों ने सुना होगा प्रक्षेपात्र मिसाइल्स, बहुत सारे जो ये अस्त्र होते हैं उसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिक। तो प्रक्षेपात्मिक का मतलब है कि उसको सिर्फ फेंका जाता है, वो अस्त्र को के वापस तो ले नहीं सकते। तो इसी प्रकार माया क्या करती है कि हमें बार बार इस भौतिक जगत में वो नीचे डालती रहती है। जैसे एक कीड़े को आप गोबर से बाहर निकालो, उसको कहो हमने आपको मुक्त कर दिया, लेकिन वो फिर उसमें चला जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो इस प्रकार इस भौतिक जगत में बहुत सारा प्रलोभन देकर वो हमें ढक देती है। तो यहां प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा भौतिक संसार में जो भी हमारे साथ हो रहा है ये मन एक ही इसका कारण है। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता के 6वें अध्याय में तो अमृत बिंदु उपनिषद से एक श्लोक बताते हैं, मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष बंधाय विषय संगो मुक्त निर्विषय मन। इसका अर्थ ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए मन है वो क्या है, मुक्ति का और बंधन का कारण है। अगर जो मन इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है वो बंधन का कारण है, और जो मन भक्ति में लगा हुआ है वो मुक्ति का कारण है। तो इस प्रकार हमारा मन जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें कृष्ण भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। तो पुराण में भी एक ऐसे एक उल्लेख दिया है, तो उसमें बताते हैं कि मर्कटम सुरापाणम तदेकम वृक्षिक दमनम। तो आज लोगों की क्या स्थिति है, आज के लोगों की स्थिति क्या है, जैसे मर्कट आप लोग जानते हैं मर्कट का मतलब क्या होता है, बंदर। हाँ, तो अभी आप लोग जानते हैं कि बंदर तो कहीं चुपचाप बैठता नहीं, उसको आप कितना भी कुछ भी प्रलोभन दो चुप नहीं बैठेगा। अगर ऐसे बंदर को अगर समझो एक दारू की बोतल पिला दी गई, एक तो बंदर है उसको शराब पिला दो, और उसके ऊपर उसको एक बिच्छू, अगर उसको एक बिच्छू का डंक लग गया तो क्या होगा, ट्रिपल एक्शन है कि नहीं। एक तो बंदर है, एक तो उसको पिलाया गया और एक बिच्छू भी उसको काट दिया तो क्या होगा। तो आज लोगों की, आधुनिक जगत की लोगों की स्थिति क्या है, यही है मर्कटम सुरापाणम। तो आजकल लोगों के हाथ में दो दो मोबाइल है कि नहीं, दो दो मोबाइल, कभी कभी लोगों के पास चार चार मोबाइल, पता नहीं चलता है कि कौन सा मोबाइल बज रहा है। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि उसमें वो बताते हैं कि अगर लोग इसी प्रकार मोबाइल इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनकी जीवन की अवधि 20 साल घट जाएगी, जो भी वो लोग जीने वाले। आजकल तो 50-60 से ज्यादा कोई जीता नहीं, लेकिन अगर ये 4G अभी 5G भी आने वाला है तो जो भी है अगर इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो बताते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पागल हो जाएंगे लोग, और उनके लिए सोने की दवा खानी पड़ेगी रात को सोने के लिए। तो ये आगे स्थितियां आने वाली है। तो ये सब क्या है, माया का प्रलोभन है। माया एक एक गाजर दिखाती रहती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं अगर गधे को आगे बढ़ाना है तो ढोबी क्या करता है कि गधे के ऊपर बैठता है और एक लकड़ी के ऊपर गाजर टांग देता है, और वो गधे के सामने गाजर को ऐसे नीचे उतार देता है, तो गधा फिर चलने लगता है, उसको लगता है कि मैं चलूंगा तो गाजर मुंह में आ जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो गाजर आगे 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 चलता जाता है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जितने भी कंपनीज है, जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो भी आपका कंप्यूटर से लेके मोबाइल बना रहे, तो ये क्या है कि वो आपको अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देते रहते हैं। तो भागवतम में कृष्ण भगवान जो है उद्धव गीता में, उद्धव जी को भी एक बहुत अच्छी कथा बताते हैं, एक अवंती ब्राह्मण की कथा बताते हैं। और ये अवंती ब्राह्मण का जो साक्षात्कार है बहुत अच्छा साक्षात्कार है, और अवंती ब्राह्मण वो उस कथा में ये बताते हैं कि किस प्रकार हमारा मन, इसने ये आत्मा को घेर लिया है और इसको जबरदस्ती पकड़ कर क्या कर रहा है, वो उसको इस संसार चक्र में घुमा रहा है। तो ये श्लोक में बहुत अच्छा श्लोक है, नायम जानो मे सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काल मन परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत। तो ये ब्राह्मण बताते हैं कि देखो इस भौतिक जगत में मेरे सुख और दुख के कारण न तो ये देवता है, कभी कभी कोई कहता है कि चलो मेरे 7.5 चल रही है, काफी लोग कहते हैं कि मेरे अभी नक्षत्र अच्छे नहीं है 7.5, तो काफी लोगों को मैंने काफी बार देखा है कि शनिचार के दिन ये शनि वाले आके ये सामने वाला गेट और वहां का है, जो गेस्ट है उसका गेट है गोविंदा, दो शनि वाले बकेट लेके खड़े हो जाते हैं। तो जैसे कोई बाहर आता है वो शनि को दिखाता है, वो डर जाता है, अरे यहां कहां शनि आ गया। तो अगर आप कभी आप जाएंगे हमारे वृंदावन के वहां जावट के उस तरफ कोकिला वन है, तो दिल्ली से हर शनिचार को लगभग, अभी वहां तो 4 लेन बना रहे, इतनी गाड़ियां आती, इतनी ट्रैफिक हो बढ़ जाती है वहां, शनि को डर के लोग वहां आते हैं शनि को तेल चढ़ाने के लिए। तो ऐसे कोई एक भक्त थे, उनको भी लगा कि मेरे ऊपर भी शनि का कुछ प्रभाव होगा। ऐसे तो शनि तो भगवान के भक्त है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो एक बार उसने किसी ब्राह्मण से कहा, अरे कोई यज्ञ करो शनि की शांति के लिए। तो उसने कहा ठीक है, अगर यज्ञ करना हो तो 11,111 रुपए लगेंगे। उसने कहा अरे नहीं, ये तो बड़ा बजट है, कुछ कम करो। उन्होंने कहा ठीक है 5,555, मतलब उतना नहीं होगा, 2,222, 1,111 उतना भी नहीं, 111 उतना भी नहीं है, ठीक है फिर 11 रुपए मतलब उतना भी नहीं है। तो उसने कहा फिर शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है, तो तुमको डरने की क्या बात है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए। तो यहां ये ब्राह्मण क्या बता रहे, न तो कोई देवता, न तो मेरा शरीर, न तो ग्रह। बहुत सारे नव ग्रह की लोग पूजा करते हैं कि नहीं, नव ग्रह ठीक है। वो कहते हैं न तो मेरा पूर्व कर्म, न तो काल। लोग समय से बहुत डरते हैं, काल, काल बड़ा बलवान, काल को वो कहा जाता है बड़ा बलवान है। और वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक मेरा मन, मन एव कारणम आमनंती, ये मेरा मन है, यही क्या कर रहा है मुझे इस भौतिक जगत में ये घुमा रहा है। तो आगे उनका वो श्लोक जो है उसमें बताते हैं कि ब्राह्मण बता रहे हैं कि परमात्मा यद्यपि भौतिक शरीर के भीतर संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है, किंतु वह प्रयास नहीं करता, निष्क्रिय रहता है। मैं परमात्मा वो हमारे साथ है, निष्क्रिय है, क्योंकि वह पहले से ही दिव्य प्रकाश से समान्वित होता है। वह मेरे मित्र की भांति कार्य करते हुए अपने दिव्य पद से केवल साक्षी बनता है। दूसरी ओर अत्यंत सूक्ष्म आत्मा रूप में इस मन को अपना चुका है, जो भौतिक जगत के प्रतिबिंब प्रतिबिंब को परावर्तित करने वाला है। इस तरह मैं इंद्रिय विषय का भोग करने में लगा हूं और प्रकृति के गुणों के संसर्ग में के कारण बंधा हुआ हूं। तो ये जो है अवंती ब्राह्मण, तो उनकी कथा आपको संक्षिप्त में बताते हैं। ऐसे एक प्रकार के कोई बनिया थे, लेकिन बड़े कंजूस थे। तो घर वाले इतने पक गए कि घर वालों को कुछ मेंटेनेंस, कुछ कोई चीज में खर्चा नहीं करते थे। तो एक ऐसे समय आया कि धीरे धीरे उसका धन है वो चोर लूट के लेके गए, फिर राजा ने टैक्स कर के रूप में ले लिया और बिल्कुल कंगाल हो गया। अब आप देखते हैं कि आपके पास कुछ है नहीं तो घर वाले क्यों रहेंगे, कि नहीं। तो घर वाला ने भी इसको छोड़ दिया। तो उसने सोचा अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, चलो त्रिदंडी सन्यासी बन जाते। तो यहां इस्कॉन में भी काफी लोग आके पूछते हैं, प्रभु जी कुछ सेवा मिल सकता है क्या, यानी थोड़े बुजुर्ग लोग, कि बस आपके यहां में रखो कुछ सेवा दे देंगे, कोई बुरा मत मानना। ऐसे काफी लोग आते हैं पूछते कोई सेवा मिलेगी। तो बेचारा इसकी भी ऐसी स्थिति हो गई, तो उसने संन्यास ले लिया। लेकिन गांव के लोग जानते हैं ना इसका पूर्व इतिहास। तो फिर गांव वाले ने सोचा, अरे देखो अभी सब कुछ इसका खो गया, सब कुछ निकल गया, तो अभी इसको संन्यास की याद आ गई, चलो। तो लोग क्या करते थे, कभी कभी उसको बांध देते थे, कभी कभी अब उसका कपड़ा चुरा लेते थे, कभी कभी उसको पीटते थे। तो इस प्रकार उसके द्वारा उसको कुछ ना कुछ उंगली करते रहते थे। तो इस प्रकार उसको इतना परेशान कर दिया। तो फिर उसको, इसको कहते भिक्षुक गीत, उसका जो उसने जो गीत लिखा है उसको कहते भिक्षुक गीत। तो फिर उसने सोचा चलो अभी मेरे जीवन में जो भी स्थिति आने वाली है और जो भी हो रहा है इसके लिए मेरा मन ही कारण है, ये मेरा मन ही सब कुछ करा रहा है। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में ऋषभ देव, उनका भी एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें वो बताते हैं, पराभवस्तवत आबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत क्रियास्तावत इदम मनोवै कर्मात्मकम एन शरीर बद्ध। तो इस शरीर में हम कैसे बन जाते हैं, बंद कैसे बन जाते हैं, कर्म, हमने जो भी कर्म किया है उसके कारण हम इसमें बंधे जाते हैं। वो बताते हैं कि जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है, यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है, और जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अशुद्ध अस्पष्ट रहती है, और जब तक मनुष्य सकाम और भौतिक कर्म में लगा रहता है तब तक वो देहधारी बंधन में पीड़ा पाते रहता है। तो ये ऋषभदेव बता रहे कि जब तक एक व्यक्ति भौतिक जगत के कर्म में लगा रहता है तो वो इस बंधन से कभी मुक्त नहीं होगा। तो भागवत में आगे ये ब्राह्मण बताते हैं कि एक व्यक्ति अपना धन संग्रह करने के लिए वो उसको क्या क्या करना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें वो बताते हैं सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि तथा उपभोग में महान श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। और इसके दौरान क्या क्या होता है, चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, गर्व, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्य को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण है किंतु लोग भ्रमवश इसको महत्व देते हैं, इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। तो ये एक उपदेश दे रहे। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आज लोगों की यही स्थिति है, सब लोग अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहानी बताते थे, जापान में एक कोई रईस व्यक्ति थे, उनकी पत्नी थी और उनकी एक ये थी सेवा करने वाली नौकरानी। तो एक बार क्या हो गया कि दोनों को बुखार आ गया, मालकिन और को नौकरानी को, दोनों को बुखार आ गया। तो डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने जांच किया, जो मालकिन है उसका बुखार 100 डिग्री था, लेकिन नौकरानी जो थी उसका बुखार था 105। 105 के ऊपर जाएगा थोड़ा गंभीर स्थिति, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बर्फ लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, दवा देते हैं। तो डॉक्टर ने ये सलाह दिया कि आप देखो जो नौकरानी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, अभी जो स्थिति है। तो मालकिन वो भड़क गई, बोलने कर एक क्या मूड डॉक्टर है, तुम जानता नहीं कि मैं मालकिन हूं और कहते हो कि नौकरानी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो रूपा जी बताते कि आज लोगों की यही स्थिति है, तो हर एक व्यक्ति अपना जो है वो टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब है कि धन संग्रह जो भी है वो बढ़ाते जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक व्यक्ति संसार में कभी तृप्त नहीं होता। तो वामन देव है, उन्होंने भी बलि महाराज को एक बहुत अच्छा उपदेश दिया भागवतम में। जब ही बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव आए थे, तो जब ही बलि महाराज ने वामन देव से पूछा, अरे मांगो मुचा है मांगो, जैसे कोई लोग होते ना एम्प्टी ब्लाइंड चेक देते, कहते चलो जो चाहिए लिख लो। तो लेकिन वामन देव ने कहा कि जितनी मेरी कद है उतनी जगह दे दो। तो कहने लगा, रे मैं कुछ भी देने के लिए समर्थ हूं, आप नहीं जानते मैं 14 जगत का राजा हूं। तो फिर उस वक्त वामन देव ने बलि महाराज से बताया, उनसे बताया कि देखो जो व्यक्ति तृप्त नहीं है, जिसके इंद्रिय काबू में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति संसार में उसके पास कुछ भी हो लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होगा। तो हमारे आचार्य जो बताते हैं कि जैसे यहां प्रूपा जी इनका कोट करते हैं, जो राजा अम्बरीश उनका उल्लेख देते हैं कि किस प्रकार हमें भक्ति में लगना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जो है उन्होंने भागवतम में बहुत एक अच्छा श्लोक दिया है कि किस प्रकार हमारे इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होने वाले। एक बार एक महाराज बता रहे थे, अगर एक व्यक्ति, ये संन्यास के भी 4 आश्रम होते हैं, और एक संन्यासी जो ऊंचा आश्रम होता है उनको कहते हैं परमहंस। अगर एक व्यक्ति परमहंस, हंस का मतलब है कि हंस होता है, आप दूध को पानी में डाल दो वो पूरा उसमें से सिर्फ दूध को ले लेगा। तो एक व्यक्ति अगर परमहंस भी बन जाता है, लेकिन हमारा जो मन है वो हमें कहीं ना कहीं गुमराह करता रहेगा। तो यहां एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जो रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उसको संक्षिप्त में बताएंगे। वो बताते हैं कामादिनाम कतिना कतिदा पलिता दुर्निदेशास्तेषां जाता मैना करुणा न तृप्त नो पश्यन्ति। वो बताते हैं कि अरे देखो, ये मेरे जो भौतिक इच्छाएं हैं तो इनको मैं अब तक इतनी सेवा देते गया, तो आज तक मैंने इनके प्रति क्या नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन ये लोग तृप्ति है नहीं। आज तक जो है मैंने इनके लिए सब कुछ किया लेकिन ये लोग अभी भी तृप्त नहीं है। लेकिन वो बताते कि हाल ही में मुझे एक बहुत ही बड़ा साक्षात्कार हो गया। अभी जो भगवान यदुपति है, किसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा उनके भक्ति में मैं अभी लग गया हूं, तो इसके द्वारा अभी मैं क्या करूंगा कि मेरे मन के जो भी इच्छाएं हैं उनको कहूंगा चलो भाग जाओ, मैं मन की तरफ दुर्लक्ष करूंगा और इस प्रकार भगवान के निर्भय चरणों में मैं अपने आप को अर्पित करूंगा और इस प्रकार भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ अम्बरीश महाराज का जो उल्लेख कर रहे हैं कि हालांकि राजा अम्बरीश महाराज जो है उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था। तो भागवतम में सिर्फ 3 श्लोकों में उनका पूरा जीवन चरित्र दिया है। सवय मन कृष्ण पदारविंदयोर, प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे पहले मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो आप देखते हैं कि जब ही मन को हम भगवान के चरणों में लगाएंगे तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये आतंकवादी होता है वो बाहर देश में है तो इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जो अंदर होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए हमारे देश में हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर में बहुत कुछ सिक्योरिटी लगाया जा रहा है। अगर एक बार आतंकवादी अंदर आ जाएगा वो बहुत गड़बड़ करेगा। तो इसी प्रकार मन है वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो अगर हम मन को सबसे पहले अगर भगवान के चरणों में लगाएंगे तो क्या होगा, तो एक बार मन को हमने कंट्रोल कर लिया तो अच्छी बात है। नहीं तो एक ऐसे एक कहानी आती है इनकी जो अरेबियन टेल्स कहते हैं। तो एक व्यक्ति थे, बड़े लोभी थे, तो उनकी भी बहुत ऐसी कामना थी कि जब बहुत धन इकट्ठा करना चाहिए। तो एक बार वो एक व्यक्ति के पास गए, अल्लाहउद्दीन के पास। उन्होंने कहा अरे मुझे एक ऐसी कोई चीज दो जो मेरी सारी इच्छाओं को तृप्ति कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी जीनी है, जीनी यानी एक प्रकार एक ऐसे भूत है जो कंदिल में रहता है, तो उसको बाहर निकालो, बोलो जो भी करना है वो आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन उसको काम में नहीं लगाओगे तो क्या करेगा, आपको ही खा जाएगा, ध्यान रखना। तो ले आया और जैसे वो बाहर उसको निकाला तो उसने कहा फरमाओ क्या करना है बताओ। तो उसने कहा ठीक है मेरे लिए एक बड़ा आलीशान ये है महल बना दो। तो आलीशान महल बना दिया। तो जीनी उसके सामने आ गया, बताओ अभी क्या करना है। तो ये सोच में पड़ गया अभी क्या करना है। तो उसने कहा ठीक है एक बढ़िया बगीचा बना दो। अभी सोच में पड़ गया अभी इसको सेवा में नहीं लगाएंगे तो ये खा जाएगा। फिर सोच रहा था अभी ये फिर आएगा क्या बताऊं। तो तब तक वो बगीचा भी बना के आ गया। तो कहा अरे बताओ अभी क्या करना है। तो उसने कहा ठीक है दीवार बना दो। आजकल लोग बड़ी बड़ी लंबी दीवार 10-10 फीट की लंबी दीवार खड़े करते हैं कि नहीं। आप आजकल वृंदावन में बहुत सारे लोग जमीन लेके 10-10 फीट की दीवार खड़ी कर देते, वहां रहते तो है ही नहीं। फिर अब की बार वो सोच रहा था अब की बार आएगा तो कुछ करना तो है ही नहीं, ये मुझे खा जाएगा। तो एक सीढ़ी थी, हमारे मंदिर में काफी जगह आप देखते कि सीढ़ी लगाया रहता है। तो उसने कहा ठीक है आप क्या करो अभी सीढ़ी में चढ़ते रहो उतरते रहो जब तक मैं अगला काम नहीं बताऊंगा, लगे रहो ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी बताते कि हमारे मन को क्या किसमें लगाना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो अक्सर ही बताया करते थे कि हमारे मन को सुबह 100 बार जूता मारना चाहिए। अभी कौन सा जूता उन्होंने बताया नहीं, जूते में भी बहुत प्रकार होते हैं। आजकल लोग तो 10-10 हजार रुपए के जूते डालते हैं। मुझे याद है काफी पुरानी बात है, यानी अब तो लगभग 15 साल पुरानी घटना है। तो बंबई में जिस मंदिर में मैं था वहां बच्चों के लिए एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन था और उस समय एक कोई जूता था, एक कंपनी वाले कहते हैं जस्ट डू इट का मतलब करते जाओ, ये तो जानवर को लागू होता है। तो वो बच्चा एक बहुत ही महंगा जूता पहन के आया था, वो आर्ट कंपटीशन था। जैसे उसका उसने अपना पेपर सबमिट किया, बाहर जा रहा था तो वहां मैं भी खड़ा था, मुझे मालूम नहीं था क्या हुआ। तो बच्चे ने जब देखा जूता नहीं मिल रहा है तो तुरंत वो रोना चालू कर दिया उसने, मम्मी माई शूज, तो जूते उसके खो गए। तो जो भी है, तो आजकल लोगों की अकल है वो अपने जूते में है, या तो जूते में या तो मोबाइल में, सब कुछ उसी में होता है। तो वो बताते कि अपने सर के ऊपर 100 बार जूता मारना चाहिए और रात को सोने से पहले झाड़ू मारना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कभी आपके घर में बिन बुलाए मेहमान आए तो आप क्या करते हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते तो निकल जाते हैं, उनको पता चलता है कि कुछ दाल पकने वाली नहीं है कि नहीं। तो उसी प्रकार कोई बीमारी आती है तो शास्त्रों में लिखा है कि उपवास जो है लंगनम, उपवास जो है ये सबसे अच्छा दवा है कोई भी बीमारी के लिए। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि जस्ट नेग्लेक्ट द माइंड, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस मन को दुर्लक्ष करो, क्योंकि मन जो है बहुत सारा प्रलोभन देता रहेगा। तो आज इस श्लोक में जो है यहां आप देखते हैं कि राजा रघुगुणा जो है उनको जड़ भारती बता रहे कि हमारा मन है उसने क्या किया है, ये इस आत्मा को पकड़ के रखा है और वो क्या कर रहा है कि इस आत्मा को पकड़ के ये अपने मन के और 10 साथीदार है, 10 साथीदार जो है उसके कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये उसके मित्र हैं। तो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी एक इसमें उल्लेख करते हैं कि हमारा मन क्या है और उसके जो मित्र है काम क्रोध, ये हाईवे रॉबर्स, हाईवे ने जो आप देखते कि जैसे जंगलों में डकैत होते हैं, तो ये डकैत लोग क्या करते हैं कि जब एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं सबसे पहले तो उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसके मुंह में पट्टी बांध देते हैं और फिर उसके सर में पट्टी बांध देते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं। तो पहले जमाने में तो ऐसे सुना जाता है कि डकैत लोगों को मार भी डालते थे, तो उस व्यक्ति को पूरा लूट लेते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि हमारा मन कैसा है, ये हाईवे रॉबर जैसा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान या भगवान के भक्तों को जोर से पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देखते हैं कि जैसे बच्चे कभी कुछ दुविधा में हो तो जोर से चिल्लाते हैं, मम्मी डैडी जो भी है, तो उनको पता चलता है जो हमें मेरा कोई संरक्षण करेगा। तो यहां वो ये बता रहे कि किस प्रकार ये हमारा मन हमें क्या कर रहा है कि सब जगह ये घुमा रहा है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने हमें ये उपाय दिया है कि हमें इसको जो है निरंतर हमारे मन को जो है भक्ति में लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि यहां कहा गया है, माया रचिता आत्मा स्वदेहिनम संस्मृति चक्र कूट, मन परम शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढका ओढ़ा करके उसे भवसागर की तरंगों में लापटकता है। लापटकता है का मतलब है, पटकने का मतलब आप लोग जानते हैं। तो ये इसलिए हमें यही प्रयास करना चाहिए कि इस मन को दुर्लक्ष करना चाहिए। हरे कृष्णा, किसी को ही टीका है प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल।